रात की क्लास चल रहा था, चार ग्यारह 1966 दूसरे पेज के मध्य अंत में बात चल रही थी। ब्राह्मण नहीं बनेंगे, ब्रह्मा मुख की औलाद पवित्र ब्राह्मण नहीं बनेंगे तो फिर तुम देवता कैसे बनेंगे? ये ब्राह्मण सो देवता बनने की बात सेकंड में कितनी सहज समझाते हैं। संपूर्ण ब्राह्मण सो संपूर्ण देवता, अधूरे ब्राह्मण तो अधूरे देवता। संपूर्ण ब्राह्मण बनेंगे तो संपूर्ण 16 कला संपूर्ण राजधानी में आवेंगे। संपूर्ण पवित्र ब्राह्मण नहीं बनेंगे तो 16 कला संपूर्ण राजधानी में थोड़े आवेंगे, कहाँ जावेंगे? है सेकंड नारायण का राज्य सतयुग में होगा, परंतु कितनी कला कम हो जाएगी? चौथाई कला कम हो जाएगी। और यथा राजा तथा उसी की प्रजा भी चौथाई कला कम हो जाएगी। ये कमजोरी द्वैतवादी द्वापर युग में जाकर के क्लियर होगी। वो द्वैतवादी जो पहला धर्म पिता आता है, द्वैतवादी दूसरे धर्म में घसीट के ले जाएगा। अपने संग के रंग में ले जावेगा। ये संग के रंग में आने की कमजोरी का फाउंडेशन कहाँ पड़ा? संगम युग में ही पड़ता है। इसलिए ब्राह्मण जीवन में संग के रंग की बड़ी बलिहारी है। गाया हुआ है कि सेकंड में जीवन मुक्ति, एक सेकंड में जीवन में रहते हुए दुख दर्दों से मुक्ति। कहाँ? संगम युग में भी बाप जब आते हैं और आकर के दक्ष से राजधानी स्थापन कर देते हैं, सर्वशक्तिवान बाप है या शक्तियों में कुछ कमी है? सर्वशक्तिवान बाप है, वर्षों तक, महीनों महीनों तक पुरुषार्थ में नाक नहीं रगड़वाता। क्या करता है? एक सेकंड में आते ही नई सोलह कला संपूर्ण राजधानी में आत्मा को जीवन मुक्ति की अनुभूति कराई देता है। जनक का मिसाल है, तुम सब सीताएं हो, तुम सब सीताओं का बाप जनक, जन माने जन्म देने वाला, का माने जन्म करने वाला। कैसा जन्म करने वाला बाप? संपूर्ण सोलह कला संपूर्ण राजधानी स्थापन करने वाला बाप या कमजोर राजधानी स्थापन करने वाला बाप? सेकंड में विश्व की बात चाहिए दे देते हैं, लेकिन किसको है? कौन से ब्राह्मणों को? ब्राह्मण तो नौकरियों के होते हैं। एक से एक नीची कुरी वाले, नीची धारणाएं स्थापन करने वाले और ऊंची से ऊंची धारणाएं भी स्थापन करने वाले। अपनी आत्मा के ही अंदर संग के रंग से अथवा जैसा अन्न वैसा मन बना करके संपूर्ण राजधानी प्राप्त कर लेते हैं एक सेकंड में। तो बरोबर बाबा को जाना तो बाबा से ही तो वर्षा मिलेगा ना। वर्षा किससे मिलेगा? बाबा से मिलेगा, शिव बाबा से मिलेगा या आत्माओं के बाप शिव से मिलेगा? शिव बाबा से वर्षा मिलेगा। और शिव बाबा की ही बात न मानी या थोड़ी मानी, थोड़ी नहीं मानी, दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होने वालों की निशानी क्या होगी? मुरली की आधी बातें मानेंगे और आधी बातें नहीं मानेंगे। वो विधर्मी बन जाएंगे। विदेशी धर्मों में चले जाएंगे, विदेशी धर्म खंडों में। तो बरोबर है कि बाबा को जान लिया दुनिया में बाबा ही तो बहुत है। देहधारी धर्मगुरु है या नहीं है? वो देहधारी धर्मगुरु जिनकी बुद्धि देह में धरी रहती है, देहधारियों का, देह के संबंधियों का, देह के संपर्कियों का संग छोड़ते ही नहीं। और जिनको पढ़ाई पढ़ाते हैं उनमें भी वही गुण आवेंगे या नहीं आवेंगे? तो बोला, जैसा बाप जैसा टीचर है जैसा गुरु वैसा ही बाप का बच्चा वैसा ही स्टूडेंट और वैसा ही गुरु का शिष्य बनेगा। अधूरों से पढ़ाई पढ़ेंगे तो अधूरी प्राप्ति होगी या संपूर्ण प्राप्ति होगी? और हमारा बाबा कैसा बाबा है? पुरुषार्थ में आखिरी निराकारी स्टेज में टिकने वाला है या मूर्त रूप में? मूर्ति माने साकार, साकार में बुद्धि धरी रहने वाला है, है? हमारा बाबा तो निराकारी निर्विकारी और निरहंकारी है, जिसकी यादगार सारी दुनिया में सार्वभौम है। शिवलिंग के मंदिर बने हुए हैं, जिन मंदिरों में निराकारी सो साकारी मूर्ति रखी हुई है। कौन सी? शिवलिंग। बड़ा आकार भी है, मनस आकार भी है, ऐसे नहीं कि शरीर नहीं है। बड़ा शरीर तो है लेकिन उस शरीर की स्थिति कैसी दिखाई है? न हाथ न पांव न आंख न कान, कोई भी इंद्रिय नहीं देखने में आती है। इसका मतलब क्या हुआ है? ये मतलब हुआ कि उन इंद्रियों से कर्म करते हुए भी देह में बुद्धि धरी हुई है, देह की इंद्रियों में बुद्धि धरी हुई है, या इंद्रियों से बुद्धि उपराम हो गई है? उपराम हो गई है। ऐसा चोटी का पुरुषार्थ करने वाला, जैसे पहाड़ की चोटी होती है ना, सबसे ऊंची होती है, ऐसे ऊंचते ऊंच पुरुषार्थ करके आत्माओं के बाप शिव समान निराकारी निर्विकारी निरहंकारी स्टेज धारण करने वाला है। बाबा है, आत्माओं का बाप नहीं है, क्या है? ग्रैंडफादर। आत्माओं का बाप जो सुप्रीम सोल शिव है, उसका एक ही संबंध आत्मा रूपी बच्चों से है। क्या? बाप और बच्चा। लेकिन ये तो शिव बाबा है, वो शिव ज्योति बिंदु जब साकार मुकरर रथ में आता है तो ग्रैंडफादर बनता है, सभी संबंध निभा सकता है शरीर के साथ। तो देखो ऐसे साकार सो निराकार बाबा को जाना तो यही वर्षा मिलेगा ना, क्या संपूर्ण निराकारी बनेंगे या अधूरे निराकारी बनेंगे? संपूर्ण निराकारी माने देवान का नाम निशान न रहे, देवान का नाम निशान होगा तो देह के संबंधियों से लगाओ जरूर लगेगा, और देह के संबंधियों का संग का रंग छोड़ नहीं सकेंगे। फिर क्या होगा? पद नीचा हो जाएगा, माना सूर्यवंशी कुल में नहीं आ सकेंगे, कहाँ गिरेंगे? है सूर्यवंशी के बाद त्रेता में चंद्रवंशी ही होता है, जिसका फाउंडेशन कलाओं के गिरने का फाउंडेशन सतयुग के दूसरे जन्म से ही लग जाता है। ये उतरती कला देवान में उतरती कला, इसका फाउंडेशन हम अभी लगाए रहे हैं, इसलिए बाप कहते हैं अभी मौत सामने खड़ा है। मौत किसका होता है, देह का या आत्मा का? देह विनाशी है, आत्मा तो अविनाशी है। तो जो देह अभिमान में अंत तक बने रहेंगे संग के रंग के कारण, अन्न दोष के कारण, तो रिजल्ट क्या होगा? है उतरती कला के देवालन वाले धर्म पिताओं की शरण में जाना पड़ेगा या विदेही के गुप्त में रहेंगे? जो विदेही बाप का सूर्यवंशी ग्रुप है वो मनुष्य शक्ति रूपी झाड़ में नीचे से लेकर ऊपर तक सीधा जाता है, न दाई ओर झुकता है धर्मों में और न बाई ओर के विदेशी धर्मों में झुकता है। जो वाम मार्गी धर्म है बाया हाथ गंदगी साफ करने वाला है, गंदे धर्मों में जाके गिरेंगे। विदेशी बन जाएंगे, ब्राह्मणों में एक गिरती कला वाले नौ कुरियों में से आठ कुरी के ब्राह्मण हैं, और ये कहाँ बैठे हुए हैं, कहाँ बैठे पुरुषार्थ कर रहे हैं? हैं? संगम युग में बैठे पुरुषार्थ करते हैं, चाहे आधार मूर्त बने हुए जड़ों में से हैं, चाहे उन जड़ों के बीज रूप संगठन में हैं, लेकिन वो बीज रूप संगठन भी एक जैसे बीज वाले नहीं है। क्या कोई बीजों में जिन बीजों को रुद्रमाला का मणका कहा जाता है, कोई सूर्यवंश के महीन छिलके वाले हैं, देवान का बहुत महीन छिलका चढ़ा हुआ है, कोई चंद्रवंशी छिलके वाले हैं, सूर्य में और चंद्रमा में ज्ञान की रोशनी का फर्क तो पता है, है? चंद्रमा में और चंद्रवंशियों में, सूर्य में और सूर्यवंशियों में ज्ञान की रोशनी का कुछ फर्क होता है? क्या फर्क होता है? है? सूर्य स्वयं प्रकाशित होता है और सूर्यवंशी बच्चे भी स्वयं के मनन चिंतन मंथन से प्रकाशित होते हैं, अपनी आत्मा के अनेक जन्मों को जान जाते हैं। और चंद्रमा स्वयं प्रकाशित होता है या सूर्य से प्रकाश लेता है? ऐसे ही चंद्रमा को फॉलो करने वाले चंद्रवंशी किससे प्रकाश लेते हैं? है? या तो चंद्रमा से प्रकाश लेते हैं, या तो सूर्यवंशी बच्चों से प्रकाश लेते हैं। उनको ज्ञान के जो गुर्जे हैं वो समझाने वाले, जिनकी समझ से बाप की बेहद की पहचान होती है, वो खुद नहीं समझ सकते, चंद्रमा के द्वारा नहीं समझ सकते, बाद में किसके द्वारा समझेंगे? है? सूर्यवंशी बच्चों के द्वारा समझना पड़ेगा। इसलिए बोला है कि तुम बच्चे जो ब्राह्मणों की दुनिया में दीदी दादी दादाएं हैं, उनका गुण रत्नों से श्रृंगार करेंगे। कौन है? तुम सूर्यवंशी बच्चे जो ज्ञान सूर्य के सन्मुख बैठ करके ज्ञान का भंडार भरते हो, योग शक्ति का भंडार भरते हो, तो वर्षे में फर्क जरूर पड़ जाता है। जो सूर्य से भी नहीं सीखते, सूर्यवंशियों से भी नहीं सीखते, तो उन्हें किससे सीखना पड़ता है? है? चंद्रमा से या चंद्रवंशियों से सीखना पड़ता है? चंद्रवंश कौन सी युग में होता है? है? त्रेता में होता है। तो त्रेता के जो चंद्रवंशी हैं, उनकी औलाद, उनको फॉलो करने वाले, उनकी रचना इस्लाम वंशी द्वैतवादी द्वापर युग में बनेंगे। किसकी रचना बनेंगे? है इस्लाम वंश वाले या उनका धर्म पिता किससे जन्म लेगा? है चंद्रवंशियों से या चंद्रमा से जन्म लेगा? तो देखो वर्षे में बड़ा भारी घाटा पड़ जाता है। अभी बताओ तुम बच्चों का क्या विचार है? किसका संग का रंग लेना है? एक बाप का संग लेना, वो भी ऊंचे ऊंचे बाप जो इस मनुष्य सृष्टि में आकर के मनुष्य सृष्टि के ऊंचे ऊंचे हीरो पार्टधारी में प्रवेश करता है। हम उसे एक व्यक्तित्व का संग का रंग लेने वाले हैं, कोई दूसरी पर्सनालिटी का संग का रंग लेने वाले नहीं है। तुम बोलते हो ना इन भारतवासी हिंदुओं को विदेशियों ने विधर्मियों ने भटकाया है, कहां भटकाया है? है द्वापर कलयुग में भटकाया है क्या? है इस ब्रॉड ड्रामा की रिहर्सल कहो शूटिंग कहो रिकॉर्डिंग कहां होती है? संगम युग में भटकाया है। जिन्होंने भटकाया है उन आत्माओं ने नहीं भटकाया है जो द्वापर कलयुग में डायरेक्ट परमधाम से उतरती है। वो तो सत्य धाम से आती है, वो सत्य अर्थात सच्ची होंगी या झूठी होंगी? हैं? सत्य धाम से आने वाली आत्मा शुरुआत में सत्व प्रधान होगी या तमो प्रधान होगी? परंतु वो प्रवेश किस में करती है? है तमो प्रधान में या सतो प्रधान आत्माओं में प्रवेश करती है? तमो प्रधान आत्माओं में प्रवेश करती है। उन तमो प्रधान आत्माओं में भी जो ज्यादा से ज्यादा तमो प्रधान बन जाता है उन आत्माओं के ग्रुप में प्रवेश करती है। जैसे इब्राहिम आता है, इब्राहिम के पीछे पीछे परमधाम से और भी फॉलोअर्स साथ में आते हैं। कौन से नारायण में प्रवेश करेंगी? है दूसरे नंबर का धर्म पिता, दो नंबर का धर्म पिता। दो नंबर अच्छा माना जाता है या अव्वल नंबर अच्छा माना जाता है? तो वो दो नंबर का धर्म पिता कौन से ग्रुप की आत्माओं में प्रवेश करता है? है जो दो नंबर के ब्राह्मण होते हैं, बाप आते हैं बेहद के, अव्वल नंबर का ज्ञान देते हैं, गीता ज्ञान। जो गीता ज्ञान सर्व शास्त्रों में शिरोमणि माना जाता है, तो शिरोमणि ज्ञान देते हैं या तम कलाओं का ज्ञान देते हैं? है? शिरोमणि ज्ञान देते हैं, परंतु उस शिरोमणि ज्ञान को पूरा ध्यान देकर न सुनने वाले, न समझने वाले और प्रैक्टिकल कर्म में न लाने वाले क्या करते हैं? हैं? औरों के संग के रंग ज्यादा लेते हैं, औरों की बातें ज्यादा सुनते हैं, औरों का अन्न दोष ज्यादा लगाते हैं। बाप के घर में जो ब्रह्मा भोजन बनता है उसकी कदर, उसी की कदर नहीं करते। तो अन्न दोष और संग दोष का असर होगा या नहीं होगा, लेप आत्मा में लग जाता है। और ऐसा लेप छेप लगता है कि वो आत्माएं कमजोर होती चली जाती है। भले ब्राह्मण जीवन में ब्राह्मण जीवन बिताई रही है कहने मात्र के लिए कि हम ब्राह्मण तो हैं, लेकिन नीची कुरियों के ब्राह्मण बनते हैं या ऊंचते ऊंच कुरी के ब्राह्मण बनते हैं? तो देखो, यहां संगम युग में तुमको ये मायावी आत्माओं ने भटकाया हुआ है। किसने भटकाया है? मायावी आत्माएं जो मायावी दुनिया को छोड़ती ही नहीं है, मायावी धंधों को छोड़ती नहीं है। माया के पांच विकारों को छोड़ती नहीं है, विकारों की गंध में ही गिरते रहते हैं। उन मायावियों के संग के रंग में रहने से तुम ब्राह्मण यहां संगम युग में ही नंबरवार भटक जाते हो। नहीं तो बाबा बताते हैं एक से ज्ञान सुनना चाहिए या अनेकों से सुनना चाहिए? एक से ज्ञान सुनेंगे, एक से बातें करेंगे तो क्या रिजल्ट होगा? एक के असंग का रंग लगेगा या अनेकों का संग का रंग लगेगा? तो देखो, भटकने का फाउंडेशन ब्रह्मा के द्वारा रची हुई ब्राह्मण धर्म की नौ कुरियों में ही लग जाता है। और यहां तो भटकने की बात ही नहीं। यहां माने कहा है? संगम युग में भटकाव की शूटिंग तो होती है, लेकिन यहां भटकने की बात नहीं। यहां माने कहा है? बाप के सन्मुख तो भटकने की बात है ही नहीं। क्यों नहीं है? है? बाप तो सर्वशक्तिवान है, लेकिन सर्वशक्तिवान बाप देह अभिमानी सांडों को सुनाता है, ज्ञान देता है, या जो बाप के सन्मुख बैठ करके आत्म की स्थिति में रहते हैं उन आत्माओं को ज्ञान देता है? और उन आत्माओं में कोई आत्माएं देखने में तो ये आती है कि बाप के सन्मुख बैठिए, ज्ञान सूर्य के सन्मुख बैठिए, लेकिन मन बुद्धि रूपी आत्मा कहां धरी रहती है? है देह के संबंधियों में धरी रहती है। क्यों? क्योंकि एक घंटे बाप के सन्मुख आकर बैठते हैं और 23 घंटे किन का संग का रंग लेते हैं? देहदारियों का संग का रंग लेते हैं। तो बुद्धि कहां जावेगी? देहदारियों में ही जावेगी। तो बताया यहां जो बैठते हैं मन बुद्धि रूपी आत्मा के द्वारा बाप के सन्मुख, मन बुद्धि को ही आत्मा कहा जाता है ना, तो मन बुद्धि रूपी आत्मा अगर बाप के सन्मुख है, बाप के विमुख नहीं है। क्या ऐसे होता है ना कि आंखों से सामने देखते तो है कि बाप बैठा है, लेकिन मन बुद्धि बाहर की दुनिया में जा रही है, देह के संबंधियों में जा रही है, तो उनको सन्मुख कहेंगे या ब्राह्मणों का वातावरण बिगाड़ने वालों में कहेंगे? हैं? ब्राह्मणों का जो वातावरण है उसको भेदन करने वाले हैं, वातावरण को बनाने वाले नहीं है। तो भटकने की बात किनकी नहीं है? जो बाप के सामने शरीर से भी बैठे हैं, इंद्रियों से भी सामने हैं और मन बुद्धि रूपी आत्मा से भी सन्मुख हैं, मन में विरोधी संकल्प नहीं चल रहे हैं, बाप के बैठे हैं सामने और मन में बाप के प्रति, बाप के बच्चों के प्रति विरोधी संकल्प चल रहे हैं, तो सन्मुख हुए या विमुख हुए? विमुख हो गए। इसलिए बताया यहाँ बाप के सन्मुख बैठने वालों के लिए तो भटकने की बात है ही नहीं, यहाँ तो सेकंड की बात है। वो सेकंड आना चाहिए। कौन सा सेकंड? जिस सेकंड में जो पहली बार देखे इन आंखों से, जो इन कानों से बाप के दो शब्द भी सुने इन कानों से, उस सेकंड में उनको दिल से ये अनुभूति हो जाए कि मेरा बाप आ गया, मेरा बाप मुझे मिल गया, वो सेकंड जिसमें एक बाप के सिवाय और कोई की स्मृति ना आवे, ऐसा फाउंडेशन लग जाए। पहली बार का फाउंडेशन अच्छा होगा, मकान का फाउंडेशन नींव अच्छी होती है तो उसके ऊपर जो भी मंजिलें खड़ी की जाती हैं वो मजबूत होती हैं या कमजोर होती हैं? हैं? मजबूत होती है। तो बाप आया तो हुआ है, लेकिन इस दुनिया में अभी गुप्त पार्ट बजाय रहा है या प्रत्यक्ष पार्ट बजाय रहा है? गुप्त पार्ट धारी है। जैसे बच्चा गर्भ में आया हुआ तो है, लेकिन गुप्त पार्ट बजाय रहा है या प्रत्यक्ष पार्ट बजाय रहा है? गुप्त पार्ट बजाय रहा है। जब गर्भ से बाहर आएगा तो घर के भातियों को भी आवाज सुनाई पड़ेगी बच्चे की, जिस बच्चे ने प्रत्यक्षता रूपी जन्म लिया, पड़ोसियों को भी आवाज सुनाई पड़ेगी। तो क्या कहेंगे, बच्चा आया या नहीं आया?
आया।
शंका नहीं रहेगी क्या कि पता नहीं पेट में बच्चा है या बच्ची है, पैदा होगा लूला लंगड़ा, पैदा होगा कैसा पैदा होगा, कुछ पता नहीं है। संशय है या नहीं है? है। अरे जब तक पैदा नहीं हुआ है तब तक कन्फर्म है कि बच्चा आया है? नहीं। ऐसे यहाँ भी है, अभी बाप गुप्त और बाप के बच्चे पांडव गुप्त, तो पक्का है कि बाप ने प्रत्यक्षता रूपी जन्म ले लिया है, पक्का है? हैं? अगर पक्का है तो सदा काल निश्चय बुद्धि रहना चाहिए या निश्चय आता रहेगा? है, सदा काल निश्चय होना चाहिए, लेकिन देखने में क्या आता है? अभी 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 9 दिन की भट्टी करते हैं, उस भट्टी में ही भोजन मिलता है, पीना मिलता है, बाहर जाना भी नहीं होता, अंदर ही सब प्रकार की प्राप्ति। जैसे गर्भ में 9 महीने बच्चे को सब प्रकार की प्राप्ति होती है, गुप्त रहने के टाइम पर, फिर बाहर निकलते हैं तो बाहर की दुनिया आ जाती है। ऐसे ही हम बच्चे भी ज्ञान की, योग की, ज्ञान अग्नि योग अग्नि की भट्टी तो करते हैं, पकते भी हैं, परंतु पक करके जब बाहर की दुनिया में बाहर आते हैं तो निश्चय सदा कायम रहता है या निश्चय उखड़ता रहता है? है? सदा काल निश्चय बुद्धि रहते हैं या बीच बीच में परसेंटेज में अनिश्चय भी आता रहता है? है? आता है या नहीं आता है? आता है। क्यों आता है? है? क्योंकि बाप ने अभी पूरा प्रत्यक्षता रूपी जन्म नहीं लिया है। कब लेता है? प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेता है महाशिवरात्रि, गाई हुई। कैसी रात्रि? दुनिया में ऐसी महान रात्रि, बड़ी रात्रि कभी न हुई है और न कभी होगी। ऐसी महान रात्रि में शिव बाप का जन्म होता है प्रत्यक्षता रूपी। कैसी रात्रि? अज्ञान अंधकार की रात्रि। ऐसी अज्ञान अंधकार की रात्रि जिसमें बाहर की 500-700 करोड़ दुनिया तो अज्ञान अंधकार में डूबी हुई है, पंचभूतों से बने हुए देह के देहभान में डूबी हुई है, भौतिकवाद में डूबी हुई है। किसी को आत्मा का ज्ञान नहीं है, बाहर की दुनिया वालों को, उनकी तो बात ही छोड़ दो, परंतु जो कहते हैं कि हमें ज्ञान सूर्य बाप मिला है, ब्रह्मा तन में आकर के हमको ज्ञान की रोशनी दे रहा है, हम ब्राह्मण बच्चे बन गए हैं, वो ब्राह्मण भी सभी ब्राह्मण बेसिक वाले हो, बेसिक ज्ञान लेने वाले या एडवांस ऊंची कक्षा का ज्ञान लेने वाले, बाप के ऊपर निश्चय बुद्धि है। अच्छा, बेसिक वाले निश्चय बुद्धि है, उन्होंने बाप को पहचाना, उन्होंने तो बेचारों ने पहचाना ही नहीं। ऊपर ऊपर का सामान्य ज्ञान ले लिया, मैं आत्मा बिंदु, मुझे आत्मा का बाप ज्योति बिंदु। लेकिन वो ज्योति बिंदु इस दुनिया में कौन से मुकर्र शरीर में काम करता है, इस बात का उनको पता है ही नहीं। तो वो भी अज्ञान अंधकार में है या रोशनी में है? अज्ञान अंधकार में है। और जो अपन को कहते हम एडवांस ज्ञान ले रहे हैं भगवान बाप से, ऊंची कक्षा का ज्ञान ले रहे, हमने बाप को पहचाना है, हमको बाप मिला है, उनकी स्थिति भी क्या है? आज निश्चय बुद्धि रूपी बाप का बच्चा जन्म लेता है। निश्चय माने जन्म हुआ, अनिश्चय माने मृत्यु हो गई। तो जन्म मृत्यु की दुनिया में है या अमरलोक की दुनिया में ब्राह्मण बन चुके हैं पक्के हैं? अनिश्चय की दुनिया में डोले खा रहे हैं। और वो अनिश्चय दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है या घटता जा रहा है? अनिश्चय दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो तमो प्रधान बनते जा रहे हैं या सतो प्रधान बनते जा रहे हैं? अनुभव की आंख से देखें, जब शुरू शुरू में एडवांस में आए थे, भट्टी से निकलने के बाद निश्चय बुद्धि बने थे, हमें बाप मिल गया, तब स्टेज अच्छी थी या अब स्टेज अच्छी है? है? क्या अनुभव में आता है? हैं? वो तो दुनिया वाले भी गाते हैं, बड़ा लुत्फ था जब कुंवारे थे हम, तुम बचपन था तो बड़ा आनंद आता था। जैसे जैसे बड़े होते गए, दुनिया वालों के संग के रंग में आते गए, वैसे वैसे वो बचपन की दुनिया की बातें स्वप्नबत हो गए। तो देखो, जो अपन को एडवांस ज्ञान लेने वाले बच्चे मानते हैं, ईश्वरीय ज्ञान का ऊंचे से ऊंचा स्तरधारी मानते हैं, वो बच्चे भी अज्ञान अंधकार में डूबते जा रहे हैं या बाहर आ रहे हैं? हैं? सच्ची सच्ची बात बताओ, अज्ञान अंधकार में डूबते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जैसे द्वैतवादी द्वापर युग से ढेर के ढेर धर्म पिताएं निकलते हैं और उनमें भारतवासी कन्वर्ट होते रहते हैं, ऐसे यहां भी ढेर की ढेर विष्णु पार्टियां निकल रही है। उन विष्णु पार्टियों के चक्कर में आते हैं, उनकी संख्या बढ़ रही है या घट रही है? बढ़ रही है। तो बताया, ये माया रूपी रावण तुम बच्चों को भटकाए रहा है। कौन सा माया रूपी रावण? कामी इस्लामी, क्रोधी क्रिश्चियन, लोभी मुस्लिम, मोही महर्षि दयानंद के फॉलोअर्स, अहंकारी रशियंस, उनके बीज यहाँ है या नहीं है? जिन बीजों के ऊपर है उन विधर्मियों के ऊपर है, उन विदेशियों के ऊपर है। आत्मा में बड़ा मोटा मोटा देहभान का छिलका चढ़ा हुआ है। इतना मोटा छिलका है कि धर्मराज के डंडे खाने के सिवाय वो छिलका उतरने वाला है ही नहीं। इन विदेशियों और विधर्मियों ने तुमको भटकाया है। जिनकी आत्मा के ऊपर, क्योंकि शरीर वृक्ष है, आत्मा बीज है, उन विदेशी विधर्मी बीजों के ऊपर देवान का जो मोटा मोटा छिलका चढ़ा हुआ है वो खुद भी भटकते हैं और अपने संग के रंग में आने वालों को भी भटकाए रहे हैं। परंतु यहाँ बाप के सन्मुख रहने वालों को भटकने की बात नहीं है, यहाँ तो एक सेकंड की बात है। जिस सेकंड में क्या होगा है, तुम पक्के पक्के ज्योतिबिंदु रूप आत्मा बन जावेंगे। कैसी आत्मा है? नो संकल्प एटाल, निसंकल्प आत्मा। मैं ज्योतिबिंदु, मेरा बाप ज्योतिबिंदु, और दूसरा दुनिया का कोई भी संकल्प टिकने न पाए। ऐसा सेकंड जब आएगा, अभी तो प्रैक्टिस कर रहे हैं क्या? अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिस करते करते जब ऐसा सेकंड आ जाएगा कि हम आत्मिक स्थिति की निराकारी स्टेज में टिक जावेंगे, तो क्या होगा है? बाप मिल जाएगा सदा सर्वदा के लिए। जो बाप हमारा वर्षा भी है, बाप हमारा घर भी है। हम आत्माओं का घर कहाँ है? अरे बच्चा पैदा होता है कहाँ से निकलता है? हैं? कहते हैं अम्मा से पैदा होता है। अरे अम्मा के अंदर पहले था क्या? हैं? तो कहाँ से आया? बाप से आया। तो जो बाप है मनुष्य शक्ति का, उस मनुष्य शक्ति के बाप में 500-700 करोड़ मनुष्य आत्मा है, बीज रूप में समा जाती है, जिसकी यादगार बाप ने हमें शक्ति वृक्ष रूपी, मनुष्य शक्ति वृक्ष रूपी झाड़ दिखाया है, जिस झाड़ में ऊपर की ओर फल कहाँ पकता है? ऊपर जाकर के पकता है, फिर उसमें से बीज झाड़ से डिटैच हो जाता है या अटैच रहता है? डिटैच हो जाता है। वो मनुष्य शक्ति रूपी बाप उस तो झाड़ के ऊपर बैठा हुआ दिखाया गया। जो आत्मा रूपी बीजों को महामृत्यु के समय विनाश की विभीषिका में से कामाग्नि से क्रोधाग्नि से देवहंस से बाहर निकाल करके अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। झाड़ का चित्र ध्यान से देखा, ऊपर कौन बैठा हुआ है? शंकर बैठा हुआ दिखाया गया है। नंगा क्यों बैठा है? है देह रूपी वस्त्र उतार दिया है, देह रूपी वस्त्र और उसकी इंद्रियों की याद नहीं है, निराकारी स्टेज है। और इतनी सशक्त निराकारी स्टेज है कि संसार की सभी आत्माओं को महामृत्यु के समय देहवान छुड़ा करके अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो आकर्षण करने वाले को नाम दे दिया है कृष्ण भगवान। कृष्ण का अर्थ क्या है? आकर्षण करने वाला। वो इस साकार सृष्टि में साकार भगवान बनकर के संसार में प्रत्यक्ष होता है, जिसमें निराकार की यादगार आत्मा की निराकारी निर्विकारी निरहंकारी स्टेज समाई हुई है। बाप समान स्टेज समाई हुई है। कौन सा बाप? आत्माओं का बाप, ज्योति बिंदु बाप, जो सदा सर्वदा निराकारी है। वो निराकारी बाप जब इस सृष्टि पर आता है तो बच्चों को नंबरवार आप समान निराकारी बना तो जाता है। तो 100% एक होगा या अनेक होंगे? 100%। और बाकी सब परसेंटेज में निराकारी बनते हैं, कुछ न कुछ देह अभिमान रह जाता है। जो भी देहवान रह जाता है उस देहवान को विनाशकारी कौन गाया हुआ है? हैं? शंकर विनाशकारी गाया हुआ है। 500-700 करोड़ मनुष्यों का जो परसेंटेज में देहवान रह जाता है उस देहवान को भी भस्म कर देता है। जो गाते हैं शास्त्रों में कि शंकर ने क्या किया है, कामदेव को भस्म किया। काम माने कामना, इच्छा। बाप तो बताते हैं, इच्छा मात्रम अविद्या, इस दुनिया की कोई इच्छा नहीं करनी, बस मैं ज्योति बिंदु आत्मा और मेरा बाप ज्योति बिंदु आत्मा, और दुनिया की कोई भी इच्छा रह गई तो इच्छा मात्रम अविद्या तो नहीं हुए ना। तो जो पुरुषार्थ करके अधूरे रह जाते हैं, क्यों अधूरे रह जाते हैं? कोई न कोई देह अभिमानी का संग का रंग छोड़ता ही नहीं, अंत काल तक नहीं छोड़ता। तो अंत मते सुगते हो जाती। तो ऐसी देहवान में रहने वाली सभी मनुष्य आत्माओं के देहभान को भस्म कर देता है, योग अग्नि से भस्म करता है, जिसको शास्त्र में दिखाया है। क्या दिखाया है? है कामदेव को भस्म कर दिया। वो समझते हैं कोई एक कामदेव होगा देवता, उसको भस्म कर दिया। नहीं, जो भी मनुष्य मात्र में कामनाएं हैं, उन सभी की कामनाओं को भस्म करने वाला है। तो गाया हुआ है, कामदेव को भस्म कर दिया। तो बताया, यहां भटकने की बात नहीं है बाप के सन्मुख, यहां तो उस सेकंड की बात है, जिस सेकंड में तुम अपने निराकारी बाप के सन्मुख ऐसी स्टेज में ठहर जावेंगे कि देवान का नाम निशान भी नहीं रहेगा। वो सेकंड लगाया हुआ है क्या कि राजा जनक को एक सेकंड में जीवन मुक्ति मिली। जीवन मुक्ति 100% राजधानी में मिलेगी, सात्विक राजधानी में मिलेगी या कमजोर राजधानी में मिलेगी? सात्विक राजधानी में मिलेगी। वो सात्विक राजधानी 100% जब बाप प्रत्यक्ष रूपी जन्म लेते हैं तो एक सेकंड में दक्ष से राजधानी स्थापन कर देते हैं। और वो सेकंड अब दूर नहीं है, क्योंकि बाप ने हमें बता दिया है कि तुम बच्चों को तमोप्रधान से सतोप्रधान बनने में नंबर बार कितना टाइम लगता है? 40 से 50 वर्ष लगते हैं। तो जो भी 40 वर्ष के बाद अगले सेकंड में कोई न कोई तो सतोप्रधान बनेंगे, तो एक सेकंड में सतोप्रधान दुनिया में रहने का अनुभव करेंगे या तमोप्रधान राजधानी में रहने का अनुभव करेंगे? है सत्वप्रधान राजधानी में रहने का अनुभव करेंगे। थोड़े होंगे या ज्यादा होंगे? है नई दुनिया में इतने ढेर के ढेर ब्राह्मण जावेंगे क्या? जावेंगे नहीं, तो छटनी होगी कि नहीं होगी? है छटनी होगी कि नहीं छटनी होगी? जिन्होंने देवान के कारण रोज या कभी कभी बाप का ज्ञान तो सुना है कहने मात्र। क्या ज्ञान? हंस बगुले इकट्ठे रह न सके, ये ज्ञान 20 बार सुना है, लेकिन एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया। ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है? और होता रहा है या नहीं होता रहा है? लंबे समय से हो रहा है या थोड़े समय से हो रहा है? हैं? लंबे समय से ऐसा हो रहा है। तो आखिरीन हंस बगुले इकट्ठे रह न सके, वो टाइम आएगा या नहीं आएगा? हैं? तो वो टाइम आ गया। जबरदस्ती करेंगे, देखे हमें कौन रोकता है। अरे कौन रोकेगा? है अरे भगवान बाप भी कहते हैं, क्या कहते हैं, मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ। क्या क्या कहते हैं, मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ। देखो बाप भी कहते हैं, मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ, मुझे भी इस ड्रामा में इस सृष्टि पर आना पड़ता है, तमो प्रधान दुनिया में आना पड़ता है, तमो प्रधान शरीर में आना पड़ता है, और जिस तमो प्रधान शरीर में आता हूँ, मुकर्रर रूप से आता हूँ, वो मनुष्य सृष्टि का बाप भी कहता है मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ, मेरी भी मनमानी नहीं चलेगी, चलेगी नहीं चलेगी। तो ये पक्का समझो, क्या देह अभिमान के कारण अगर कोई देह अभिमान दिखाएंगे, देखें हमको कौन रोकता है, तो ड्रामा तो है, ड्रामा तो कल्याणकारी है, ड्रामा के बंधन से कोई छूट सकता है, ड्रामा में कुछ न कुछ ऐसा हो जाएगा कि न चाहते हुए भी क्या होगा, हैं, जो बाप चाहते हैं वो ही हो जाएगा। बाप क्या चाहते हैं, बाप नई दुनिया की राजधानी स्थापन करना चाहते हैं या नई स्थापन करना चाहते हैं, बाप इस पुरानी दुनिया में किस लिए आया हुआ है, हैं, अनेक धर्मों की, विदेशियों की, विधर्मियों की जो अनेक प्रकार की दुनिया में राजधानियां हैं, वो सब नाश हो जाएं और एक सतो प्रधान धर्म और एक सत्व प्रधान राजधानी की स्थापना करने आया हुआ। तो टाइम भी बता दिया, क्या 40 वर्ष, 40 वर्ष में कोई न कोई आत्माएं तो दुनिया के संग के रंग से हैं, दुनिया वालों के अन्न दोष से बच करके संपन्न बनेंगी या नहीं बनेंगी, संपन्न बन जाएंगी। वो संपन्न हुई आत्माएं पहले पहले नई दुनिया का सुख लेंगी और इस ड्रामा रूपी रंगमंच पर पूरे 5000 वर्ष पार्ट बजाएंगी। तो ऑलराउंड पार्टधारी जो होंगे, ऑलराउंड पार्टधारी, वो ज्यादा बुजुर्ग आत्माएं, अनुभवी आत्माएं, बाप के बड़ल्ले बच्चे गाए जाएंगे या छोटे बच्चे गाए जाएंगे, बड़ल्ले बच्चे हैं, बड़े बच्चों को बाप का पहला पहला वर्षा मिलता है, छोटे बच्चों को बाद में मिलता है या पहला मिलता है, बाद में मिलता है। दुनिया में जितने भी राजाइयां हुई, भारतवर्ष में खास राजाओं ने अपने बड़े बच्चे को राज्य दिया या छोटे बच्चों को दिया, बड़े बच्चे को दिया, बड़ा बच्चा ना रहा तो उससे जो छोटा होगा उसको राज्य तिलक मिलता है। तो देखो अभी आत्मा रूपी जो पात्र हैं, पार्टधारी कहो, वो डिक्लेयर हो रहे हैं कौन सा पात्र, कितनी ज्ञान की रोशनी, कितनी योग की पावर अपनी आत्मा रूपी पात्र में धारण कर सकता है। वो अभी माला के रूप में प्रत्यक्ष होने वाला है और वो प्रत्यक्षता शुरू भी हो चुकी है। कब से है? कब से?
2004
से प्रत्यक्षता शुरू हुई। 76 से मनुष्य सृष्टि के बाप की प्रत्यक्षता नहीं हुई है? हीरो पार्टधारी की प्रत्यक्षता हुई या नहीं हुई? हुई। उसके बाद जो मनुष्य सृष्टि का हीरो पार्टधारी है वो प्रत्यक्ष हुआ तो बाकी लोगों के लिए टू लेट का बोर्ड लग गया या नहीं लग गया? लग गया। कोई भी परीक्षाएं होती हैं तो जो पूरी यूनिवर्सिटी में पहले नंबर पास होता है उसका अखबारों में नाम पहले डिक्लेयर किया जाता है। फिर नंबर वार जो पास विदानर होते हैं, फर्स्ट क्लास होते हैं, सेकंड क्लास होते हैं, उनका भी अखबारों में नाम आ जाता है। नंबर वार आता रहता है या नहीं? तो जो एक है, जो लक्ष्य दिया था, क्या लक्ष्य था? नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी। वो एक युगल पाटधारी तो प्रत्यक्ष हुआ, बाकी के लिए टू लेट का बोर्ड लग गया। ऐसे ही अब फिर 40 साल के बाद अभी क्या होने वाला है? हैं? हाँ, अभी 8 नंबर डिक्लेयर होंगे। अष्टदेव प्रत्यक्ष होंगे जिनकी मूर्तियां दक्षिण भारत में मंदिरों में बनाई जाती है, नॉर्थ इंडिया में नहीं बनाई जाती। क्यों है? क्योंकि दक्षिण भारत है भारत का विदेश, विदेशी तीक्ष्ण बुद्धि होते हैं या भारतवासी तीक्ष्ण बुद्धि होते हैं? है? तो बाप को कौन पहले पहचानेंगे? वो दूसरे दूसरे जितने भी धर्म हैं, उन धर्मों के जो पूर्वज हैं, उन धर्मों में सबसे पहले इस दुनिया में जन्म लेने वाले। आठों धर्मों के पूर्वज अष्टदेव जिन्हें कहा जाता है, वो इस दुनिया में पहले प्रत्यक्ष होते हैं। विदेशी उनको पहले पहचानते हैं तो वही उनका यादगार बनता है, मूर्ति बनती है, मंदिर बनाए जाते हैं। नॉर्थ इंडिया में उनके मंदिर नहीं बनाए जाते। तो 8 प्रत्यक्ष होंगे जो धर्मराज की सजाएं भी नहीं खाएंगे। ऐसी 100% पक्की आत्माएं प्रत्यक्ष होंगी दुनिया की चुनी हुई। उसके बाद 108 की लिस्ट में आने वालों की, 108 की माला में आने वालों की प्रत्यक्षता बाद में होगी। आठ प्रत्यक्ष होंगे, बाकी के लिए टू लेट का बोर्ड लग जाएगा। फिर जो भी आएंगे प्रत्यक्ष होंगे मणके माला के, वो आठ की लिस्ट में नहीं आ सकेंगे। इसलिए बोला यहां बाप कोई शास्त्र नहीं सुनाते। क्या जो सुनाने वाला है वो शास्त्र पढ़ करके सुनाता है? है नहीं सुनाता? अरे कागज के पत्तों को शास्त्र नहीं कहते? कहते हैं कि नहीं? ये पत्ते नहीं है क्या? है ये शास्त्र है या नहीं है? है नहीं है? कागज के पत्ते ही तो शास्त्र कहे जाते हैं। कौन लिखते हैं, कौन छपाते हैं? भगवान छपाते हैं है? कि मनुष्य छपाते हैं? मनुष्य लिखते हैं, मनुष्य छपाते हैं। तो ये शास्त्र पढ़ करके कोई भगवान नहीं सुनाते हैं। भगवान एक आत्मा को कहा जाता है या ब्रह्मा विष्णु शंकर अष्टदेव को कहा जाता है? है एक बाप सुनाते हैं। सुनाने वाला कौन है? एक सुप्रीम सोल सभी मनुष्य आत्माओं का बाप सुनाते हैं। कौन है? शिव बाप। शिव बाप अजन्मा है, वो जन्म के चक्र से मृत्यु के चक्र से न्यारा है, इसलिए उसकी आत्मा में तीनों कालों का ज्ञान भरा हुआ है। जो जन्म मृत्यु के चक्र में आत्माएं आती हैं, वो पूर्व जन्म की बातों को भूल जाते हैं। तो देखो उस एक भगवान बाप को जिसको कहा जाता है गॉड इज वन, क्या एक है या अनेक है? गॉड इज वन, गॉड इज द ट्रुथ, ट्रुथ इज गॉड। वो सुप्रीम सोल गॉड फादर शास्त्र पढ़ करके नहीं सुनाते हैं। क्या पढ़ करके सुनाते हैं या ब्रह्मा के तन में प्रवेश करके ओरली बोलते हैं? हैं? क्या करते हैं? बोलते हैं। जैसे और धर्म पिताएं आए, इब्राहिम मोहम्मद आया, क्या उन्होंने कुरान लिखी? नहीं। क्राइस्ट आया, क्या उन्होंने बाइबल लिखी? नहीं लिखी। बुद्ध आया है, उन्होंने अपने शास्त्र को बुद्ध ने लिखा, फॉलोअर्स ने लिखा, उन्होंने तो ओरली सुनाया। तो ये सत्य सनातन धर्म का जो बाप है, सत्य बाप जिसे गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है, वो सत्य एक ही है, बाकी तो सब झूठे हैं। क्या बाकी सब कुछ न कुछ नंबरवार झूठे हो जाते हैं इस दुनिया में, झूठ खंड में? तो सुनाने वाला कौन है? है एक ही सत्य बाप है या अनेक हैं? एक ही है। जो सत्य है वो सदा काल रहता है, या आज सत्य है कल भाग जाता है, सत्य सदाकाल रहता है। तो उस दुनिया में कोई आत्मा है जो उस दुनिया में पूरे 84 के चक्र का पाठ बजाती है? है सी भी सत्य, हो सी भी सत्य, और भूतकाल में भी सत्य थे, वो हीरो पाटदारी इस दुनिया में सदैव रहता है। इस दुनिया में सदा कायम कोई चीज नहीं है, कोई चीज है सदा कायम एक शिव बाबा ही है। तो जो शिव बाबा इस सृष्टि पर सदा कायम है, जिसकी यादगार शंकर का रूप गाया हुआ है, शंकर के लिए जन्म, शंकर के माँ बाप को शंकर की मृत्यु शास्त्रों में दिखाई है, नहीं न उसकी जन्म न उसका मृत्यु होती है, वो ही सृष्टि पर सदा काल है और सदा काल रहता है। महामृत्यु में भी क्या सबके शरीर कुछ न कुछ छूट जावेंगे, सभी मनुष्य आत्माएं कुछ न कुछ परम धाम में पड़ी रहेंगी, और वो एक ही आत्मा है मनुष्य सृष्टि का बाप, जो इस सृष्टि पर महामृत्यु के समय भी कायम रहेगा। वो कालों का काल है, महाकाल है, उसको कोई काल खा नहीं सकता। महामृत्यु के समय भी नहीं खा सकता। तो सत्य है या असत्य है? गीता में भी कहा है ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत्य। जो सत्य है उसका इस दुनिया में कभी अभाव नहीं होता, माने विनाश काल में भी अभाव अभाव नहीं होता, लोप नहीं होता। तो वो जो सदा सत्य है, इस सृष्टि में सदा सत्य है, वो कोई शास्त्र वास्त्र नहीं पढ़ते हैं, उस शंकर का शरीर तो है, मुख है या नहीं है? मुख तो है, स्थूल आंखें तो हैं, लेकिन वो आत्मा चित्रों में, जो चित्र संपूर्णता की यादगार है, चित्र चरित्र की यादगार है ना, तो कौन सा चित्र बजाया, कौन सा चरित्र बजाया है? याद में बैठा हुआ वो चरित्रवान चित्र दिखाया जाता है, और कर्मों का चित्र कम दिखाते हैं। सबसे जास्ती कौन सा चित्र दिखाते हैं है? याद में बैठा हुआ। याद मन बुद्धि से किया जाता है, उसके लिए इंद्रियों की दरकार है ही नहीं, कर्म इंद्रियों से कर्म किया जाता है। तो बाबा कहते हैं शंकर क्या करता है? कुछ भी नहीं, वो तो इंद्रियों से कुछ काम ही नहीं करता, वो क्या करता है? याद में बैठा हुआ है। तो बोला वो कोई मुख से शास्त्र नहीं पढ़ता, उसके अंदर जो सदा शिव है या नहीं, जो तीसरे नेत्र के रूप में दिखाया जाता है, वो शिव आत्माओं का बाप, जिसकी बिंदी का ही नाम शिव है, वो भी शास्त्र वास्त्र नहीं पढ़ता क्या? वो शास्त्र पढ़कर के सुनाता है? नहीं, कौन सुनाता है? हैं? हाँ, जो अधूरा ज्ञान चंद्रमा है, अधूरी ज्ञानी आत्मा है। अधूरी क्यों है? पूरा ज्ञान मना जो बाप इस सृष्टि पर नई दुनिया बनाने का पार्ट बजाय रहा है, उस बाप को नहीं जानती, नहीं पहचानती। जानते हुए भी, पहचानते हुए भी, सुनते हुए भी, फिर भी कहाँ भाग जाती है? है? कहाँ भाग जाती? बच्चों में, बच्चों में मोह लगा हुआ है, वो मोह पहचानने नहीं देता। ये देहधारियों का मोह है, ऐसा ही है। देहधारियों से जो लगाव है वो बहुत खतरनाक है। इसलिए जो ईश्वर का ज्ञान है, गीता ज्ञान, वो सिखाता ही है नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। देह देह के संबंधों से, देह के पदार्थों से, देह की दुनिया से मोह नष्ट हो जाए, कोई अटैचमेंट नहीं, तो सूक्ष्म शरीरधारी कौन है? उस शरीर में शिव बाप सूक्ष्म शरीरधारी है, है? ब्रह्मा की आत्मा सूक्ष्म शरीरधारी है। सूक्ष्म में ज्यादा ताकत होती है या स्थूल शरीर में ज्यादा ताकत होती है? है? सूक्ष्म शरीर और ज्यादा देह भान का पुतला बन जाता है। क्या किसी में कोई भूत प्रवेश करता है? जिस देहधारी में भूत आता है वो लुंजुम पुंजुम बहुत कमजोर है और उसमें भूत आता है तो बहुत पावरफुल काम करके दिखाता है कि नहीं है? हाँ, वो पावर कहाँ से आती है? सूक्ष्म शरीरधारी आत्मा से आती है। तो ब्रह्मा की आत्मा भी सूक्ष्म शरीरधारी है और वो सूक्ष्म शरीरधारी वही आत्मा अधूरी है। अधूरा चंद्रमा है मस्तक में या संपूर्ण चंद्रमा है? अधूरा चंद्रमा है। वो अधूरा चंद्रमा रूपी आत्मा दादा लेखराज की वो शास्त्र पढ़ती है। क्या वो शास्त्र पढ़ती भी है और कागज के पत्ते पढ़कर सुनाती भी है, लेकिन भगवान कोई शास्त्र नहीं पढ़ता। हाँ, उन शास्त्रों का सार सुनाता है। क्या उन शास्त्रों में तथ्य क्या है? वो ब्रह्मा मुख से निकली जो वेदवाणी है, जिसे ब्राह्मण लोग मुरली कहते हैं, उस मुरली में तथ्य क्या है, सत्य क्या है, सार क्या है, वो बात बताती है। तो यहाँ कोई माथा टेकने की बात नहीं है, कुछ भी माथा टेकने की बात नहीं है। क्या ये माथा टेक दिया? माथा टेक का मतलब क्या होता है? बुद्धि को अर्पण कर दिया। जो बुद्धि अर्पण कर दे वो बात बात में अपनी बुद्धि चलाएगा? है? नहीं चलाएगा। ये बात ऐसे नहीं, वो बात ऐसे नहीं, मुरली में ये बात ऐसे नहीं है, वो मुरली की बात ऐसे नहीं है, शास्त्रों में ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है, इस तरह बुद्धि नहीं चलाएगा। तो भगवान बाप कहते हैं यहाँ कोई माथा टेकने की बात नहीं है। क्या कि तुम अपनी बुद्धि को सरेंडर कर दो, बुद्धि चलाना बंद कर दो, ऐसा बाप नहीं सिखाते हैं। माथा टेकना भक्ति मार्ग में सिखाते हैं या ज्ञान मार्ग में सिखाते हैं? है? भक्ति मार्ग में गुरु लोग बैठे हुए होते हैं, कहते हैं हे सभा में कोई प्रश्न नहीं करना, जो कुछ पूछना हो बाद में पूछना, और बाद में उड़ जाते हैं। अब वो गुरु चाहे दुनियावी देहधारी धर्म गुरु हो, चाहे ब्रह्मा कुमार कुमारियों की दुनिया में देहधारी धर्म गुरु हो, और चाहे एडवांस ब्राह्मणों की दुनिया के देहधारी धर्म गुरु हो, वो प्रश्नोत्तर करने का मौका किसी को नहीं देते। तुम अपनी अकल मत चलाओ, बाबा का डायरेक्शन है। क्या कहेंगे? बाबा का डायरेक्शन। और बाप क्या कहते हैं? बाप माथा टेकना नहीं सिखाते। माथा रूपी जो बुद्धि है उसे अर्पण करना नहीं सिखाते। क्या? जो भी बुद्धि पूर्व जन्मों के कर्मों के हिसाब से मिली है, हरेक को अपने अपने प्रकार की बुद्धि मिली है या नहीं इस जन्म में? वो बुद्धि अपने पास रख करके बुद्धि से परखो, पहचानो क्या सत्य है क्या असत्य है। मुंह बंद नहीं करते, क्या? बुद्धि को अर्पण करना माथा टेक करना नहीं सिखाते। कहते हैं अंदर में अगर कोई संशय आता है तो क्या करो? हैं? पूछो। गीता में भी क्या कहा? गीता में भी अर्जुन से कृष्ण ने कहा, क्या कहा? परिप्रश्नेन सेवया, क्या? प्रश्नोत्तर के रूप में आत्मा की सेवा करो। अंधश्रद्धालु बनने की दरकार नहीं है, पूछो। कोई बात समझ में नहीं आती है तो क्या करो? पूछो। तो बाप कोई माथा टेकना नहीं सिखाते हैं, कुछ भी नहीं। यहां तो बिल्कुल सीधी समझानी देते हैं। तो जो सीधी सीधी समझानी देते हैं, बाप की पहचान, क्या सीधी सीधी समझानी देते हैं? बाप की पहचान। तो तुम समझाते ही नहीं हो, क्या? सर्विस के नाम पर, ईश्वरीय सेवा के नाम पर जाना आना तो करते हो, मुख से कुछ न कुछ सुनाते तो हो, जो समझानी देनी है बाप की पहचान की वो समझानी नहीं दे। जिसने समझा होगा, जितने परसेंटेज में समझा होगा बाप को, मैं जो हूं, मैं जैसा हूं, जिस रूप में पार्ट बजाए रहा हूं, मेरा यादगार मंदिर में रखा हुआ है, पार्ट बजाए रहा हूं कि नहीं, मेरे पार्ट की यादगार सार्वभौम सारी दुनिया में यादगार मंदिरों में रखा हुआ है, कि मैं जो भी पार्ट बजाता हूं, मैं जो हूं जैसा हूं, उसको कोई बिरले बच्चे हैं जो पहचानते हैं। और कभी भी अपोजिशन नहीं करते हैं, तो वो बात तुम समझाते ही नहीं हो, क्या? क्या नहीं समझाते हो? है? जो प्रैक्टिकल में पार्ट बजाने वाला बाप है, अभी है या नहीं है? प्रतिम कल माने शरीर के साथ, शरीर की कर्म इंद्रियों के साथ पार्ट बजा रहा। उस बाप की पहचान तुम देते ही नहीं हो, दुनिया भर की टिक 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 करते रहते। बाबा को ये बहुत फीलिंग आती है, बाप रे 80 साल हो गए समझाते समझाते हैं, और 80 साल होने के बावजूद भी जो बात समझने की है और समझकर जो दूसरों को समझाने की है वो बात बच्चे आज तक भी नहीं समझाते। दुनिया भर की भाग दौड़ करते हैं, ये प्रदर्शनी कर, ये मेला कर, ये कॉन्फ्रेंस कर, इधर जाओ उधर जाओ, यहाँ भागो वहाँ भागो, ये वाचा चलाओ वो वाचा चलाओ, अपना प्रभाव बैठा देते हैं। क्या समझने वाली आत्माओं के ऊपर अपना सिक्का जमा देते हैं, लेकिन जिस बाप का परिचय देना चाहिए, जिस बाप के प्रभाव में लाना चाहिए, उस बाप का परिचय वो समझाने नहीं देते हैं। जब भी बाबा रहते हैं, बाबा आया है ना, है आया है या चला गया? आया है, किस लिए आया है? अरे आने का कोई मकसद है बाबा का? किस लिए आया है? नई दुनिया बनाने के लिए आया। दुनिया में भी कोई व्यक्ति होता है, काम शुरू करता है, काम पूरा करता है तो उसको श्रेष्ठ माना जाता है। एक बार काम शुरू कर दिया तो उसको बीच में अधूरा छोड़ता नहीं, और जो बीच में अधूरा काम छोड़ करके चले जाते हैं उनको हिम्मतहीन माना जाता है, कायर माना जाता है या श्रेष्ठ माना जाता है? कायर मानते। तो बाप तो आया है ना, है जिस कार्य से आया है वो काम पूरा करके जावेगा या बीच में चला जावेगा? है पूरा करके जावेगा। बहुत वो बेचारा भटका हुआ बोलता है, क्या वो कौन है, वो कहके किसकी तरफ चला गया? वो बहुत बेचारा भटका हुआ बोलता है, वो किसकी तरफ इशारा किया है? आने वाले पार्ट की तरफ इशारा किया, जो बाप का पार्ट है वो बेचारा इस संगम में भी शूटिंग पीरियड में भी बहुत भटका हुआ है, और 63 जन्मों में भी इस दुनिया में बहुत भटका हुआ है, इस झूठी दुनिया की बहुत टक्करें झेला हुआ है। जो सत्य होगा वो सत्य असत्य से टक्कर लेगा या नहीं लेगा? है लेगा। भारत खंड सत्य खंड है, अविनाशी खंड है, तो यहाँ हिस्ट्री देख लो, विनाशी खंडों से आए हुए इतने अत्याचारियों ने कितने आक्रमण किए, किए या नहीं किए? उनसे भारतवासियों ने टक्कर ली या नहीं ली? और जन जन्मांतर टक्कर लेते रहे या नहीं लेते रहे? उन भारतवासियों में नंबरवार होंगे या एक जैसे होंगे? कोई अब्बल नंबर भी तो होगा, तो सबसे ज्यादा टक्कर कौन लेगा? है अब्बल नंबर ही लेगा। तो वो बेचारा बहुत भटका हुआ बोलता है, मैं जानता हूं। क्या? मैं जानता हूं कि ये बच्चियां जाती हैं, समझाती हैं, परंतु कोई को भी पूरा ज्ञान का तीर लगता ही नहीं है। क्यों नहीं लगता है? जिस युक्ति से समझाना चाहिए उस युक्ति से समझाती नहीं, तो ज्ञान का तीर लगता ही नहीं। और ये ज्ञान का तीर लगाना तो बहुत सहज है, बिल्कुल सहज। क्या? दो चार दिन से बाबा त्रिमूर्ति के चित्र के ऊपर बता रहे हैं कि त्रिमूर्ति के चित्र में बताना चाहिए कौन सी मूर्ति भगवान है। बताओ है? लो, कहते हैं ब्रह्मा वाली आत्मा जो सतयुग में कृष्ण का पार्ट बजाती है वो भगवान नहीं, ब्रह्मा सो विष्णु भी बनता है, देवता है 16 कला संपूर्ण वो भी भगवान नहीं, क्योंकि कलाओं में बंधा हुआ भगवान होता ही नहीं। सूर्य को कलाओं में बांधा जाता है क्या? नहीं। बाकी बचा शंकर, तो बाप कहते हैं शंकर भी याद में बैठा हुआ है ना, है याद का पुरुषार्थ करता है या नहीं करता है? पुरुषार्थ ही है या संपन्न भगवान है? है पुरुषार्थ ही है। और शंकर को महादेव कहा जाता है, देवताओं में बड़ा देवता है या भगवान है? देवता है, तो उसको भगवान क्यों कह दिया? इसलिए बाबा कहते हैं कोई मम्मा के मुरीद कोई बाबा के मुरीद, शिव बाबा को कोई पूछता ही। तो बताओ तीन मूर्तियों का जो चित्र है उसमें भगवान बाप है या नहीं है? भगवान बाप का परिचय त्रिमूर्ति में नहीं देंगे? देंगे। तो बताओ कौन है? शिवा? अरे मूर्ति की बात हो रही है। हैं? शंकर? फिर वही शंकर? अरे शंकर देवताओं में बड़ा देवता महादेव है या भगवान है? महादेव है। वो याद में बैठा हुआ पुरुषार्थ करता है याद का या नहीं करता है? तो पुरुषार्थ करने वाला है या पुरुषार्थ कराने वाला भगवान है? है वो तो पुरुषार्थ करने वाला है ना, नर माना मनुष्य है ना, मनुष्य से देवता बनने वाला है ना, है कि भगवान है? पुरुषार्थ पूरा हो जाता है। हाँ तो पुरुषार्थ पूरा हो जाता है तो तो शिव के मंदिर में शंकर की मूर्ति देवताओं के बीच में चारों तरफ जो मुख्य स्थान होता है वहां बैठी हुई दिखाई जाती है, या बीच में बैठा हुआ मुखिया बाप के रूप में दिखाया जाता है, है? देवताओं के बीच में बैठा है ना, तो भगवान है। अरे देवताओं को देवता बनाने वाला बाप है, है? है? अरे तो अब त्रिमूर्ति में बताओ ना, त्रिमूर्ति के चित्र में भगवान बाप कौन सी मूर्ति है? मूर्ति बताओ कौन सी है? शिव बाबा। किस तरफ इशारा करेंगे? शंकर की तरफ इशारा।
फिर वही बहन के वही आ गए।
इसीलिए तो बाप कहते हैं, खुद नहीं पहचाना है तो दूसरों को क्या पहचान देंगे। क्या कहा? जिसने खुद पहचाना होगा उस मूर्ति को वो ही दूसरों को पहचान देगा, या नहीं पहचाना होगा तो पहचान देगा, हैं? तो इतनी बड़ी ब्राह्मणों की सभा बैठी हुई है, बताओ कि त्रिमूर्ति के चित्र में भगवान की मूर्ति कौन सी है?
फिर वही राम वाली आत्मा,
कृष्ण वाली आत्मा ब्रह्मा का पाठ बजाती, राम वाली आत्मा शंकर का पाठ बजाती, वो ही राम वाली आत्मा, राम के भक्त रहीम के बंदे हैं सब आंखों के अंधे, बोलते हैं राम भगवान, बोलते हैं कृष्ण भगवान, अरे अंधे, राम कृष्ण देवता हैं, कलाओं में बंधे हुए हैं या कलातीत तो भगवान है? तो कौन सी मूर्ति है त्रिमूर्ति में? अरे गाया जाता है ऊंचे ते ऊंचा भगवंत, तो त्रिमूर्ति में सबसे ऊंची सबसे ऊपर कौन सी मूर्ति है? त्रिमूर्ति में त्रिमूर्ति के चित्र में वो देखो रखी है त्रिमूर्ति की मूर्ति, मूर्ति बताओ है? शिव बाप शिव बाप शिव बाप हलाया हुआ है, शिव बिंदी का नाम है या मूर्ति का नाम है? बिंदी की मूर्ति बनाओगे हैं? तो बताओ त्रिमूर्ति में भगवान बाप की मूर्ति कौन सी है? हैं? त्रिमूर्ति के चित्र में नारायण कहाँ रखा हुआ है? अरे त्रिमूर्ति के चित्र में नारायण कहाँ है? विष्णु देवता है कि भगवान है? 16 कला संपूर्ण है या कलाओं से परे है? तो भगवान कहाँ हुआ? है? ओहो, उस भगवान की यादगार बनी हुई है सारी दुनिया में, बनी हुई विदेशों में भी है, है? शिवलिंग, चुप रहो, शिवलिंग ऊपर नहीं रखा है, ऊंचे थे ऊंचा भगवंत, आंखें फाड़ फाड़ के देखो ना, है? वो बिंदी रूप में रखा है, आंखें छोटी तो नहीं हो गई तो बिंदी दिखाई दे रही है, लिंग रखा है, लिंग को मूर्ति कहेंगे या बिंदु को मूर्ति कहेंगे? है? लिंग को मूर्ति कहेंगे। कैसा मूर्ति? जो गीता में बताया गया, अव्यक्त मूर्ति ना। कैसी मूर्ति? अव्यक्त मूर्ति है। व्यक्त माने जो आंखों से देखा जाए, अव्यक्त माने जो आंखों से न देखा जाए, वो ऐसी अव्यक्त मूर्ति है जिस मूर्ति में नाक आंख कान हाथ पांव इंद्रियां नहीं दिखाई देती है, एक लिंग रूप ही दिखाई देता है, मेरे लिंग की ही पूजा होती है, देवताओं की सब इंद्रियों की पूजा होती है, नेत्र कमल, पाद कमल, हस्त कमल, मुख कमल पूजा होती है ना, वो देवताओं की सभी इंद्रियों की पूजा होती है, सिवाय सिवाय कामेंद्रिय के, कामेंद्रिय लिंग इंद्रिय की पूजा मेरी ही होती है। अब बताओ, आत्माओं का बाप जो शिव ज्योति बिंदु है वो निराकार है या इंद्रियों वाला है? उसको कामेंद्रिय है? है नहीं, वो जब इंद्रिय धारी में प्रवेश करता है और मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है तो उस मुकर्रर रथ को जो रथ है भगवान बाप कंट्रोल करते हैं, उसकी इंद्रियों रूपी घोड़ों को कंट्रोल करते हैं, करते हैं या नहीं करते हैं, उन इंद्रियों के बीच में काम इंद्रिय मुख्य इंद्रिय है, जो चंचल मन वाले मनुष्यों के कंट्रोल में नहीं आती, कंट्रोल में आती है, है? खास करके तब जब प्रवृत्ति में होते हैं, मन प्रकृष्ट रूप से वृत्ति मन चारों तरफ से घेर करके, क्या स्त्री पुरुष जब मिलन मेला मनाते हैं तो व्रत हो जाता है ना, एक दूसरे को घेर लेते हैं ना, व्रत माने घेरना, तो वो यादगार दिखाई गई है। प्रवृत्ति मार्ग का सबसे श्रेष्ठ नमूना वो यादगार जिसकी दुनिया में बड़े से बड़ी पूजा होती है, तो बड़े से बड़ा काम किया होगा तब ही पूजा होगी या छोटा काम किया होगा? जो काम मनुष्य मात्र ने नहीं किया वो काम मनुष्य सृष्टि का जो बाप कहा जाता है, जगत पिता, जगतम पितरम बंदे, कौन है कौन? अरे उसका नाम क्या है? उसका संपन्न रूप। कैसा संपन्न रूप? ऐसा संपन्न साकार रूप जिसकी मन बुद्धि रूपी आत्मा को इंद्रियों का भान रहता ही नहीं, इसलिए उस लिंग में इंद्रियां दिखाई ही नहीं दिए है, अव्यक्त है। इंद्रियां व्यक्त हैं या अव्यक्त हैं? हैं? अव्यक्त हैं। वो इंद्रियां इन आंखों से दिखाई नहीं देती। बाकी ऐसा नहीं है कि वो शिव का बड़ा रूप साकार रूप जिसके लिए बाप कहते हैं कि तुम्हें छोटा रूप बिंदु याद नहीं आता है तो अच्छा तुम बड़ा रूप ही याद करो, क्या करो? बड़ा रूप वो लिंग रूप ही याद करो। वो लिंग रूप कैसा? उसको इंद्रियों की साकार इंद्रियों की स्मृति है ही नहीं, एक निराकारी स्टेज है। एक बाप की स्मृति में बाप समान बना हुआ है ज्योति बिंदु, संपूर्ण इच्छा मात्र अविद्या, संसार की कोई भी कामना नहीं, कोई भी मनसा में संकल्प नहीं, निसंकल्प, ऐसी बीज रूपी स्टेज। उसकी यादगार है शिवलिंग। क्या यादगार है? शिवलिंग क्यों कहा, शंकर लिंग क्यों नहीं कहा है? अरे कोई कारण होगा ना, क्या कारण है? जो शिवलिंग कहते हैं शंकर लिंग नहीं कहते हैं। नाम किसका पड़ता है? है? अरे काम का नाम पड़ता है कि बिना काम किए नाम पड़ जाता है? तो ऐसा लिंगधारी जिसने उस लिंग से काम इंद्रिय से ऐसा काम करके दिखाया, ऐसा काम पवित्रता का काम, एवर प्योरिटी का काम, प्रैक्टिकल काम करके दिखाया, ऐसे नहीं सिर्फ कहने मात्र, एवर प्योर है कौन? बिंदी। अरे बिंदी 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 बिंदी, कीड़े मकोड़े भी बिंदी। वो एवर प्योर हो गए तो कौन सी स्पेशल बिंदी? वो स्पेशल बिंदु रूप आत्मा जिसने पुरुषार्थ करके ऐसी बाप समान स्टेज धारण कर ली निराकारी कि उसे दूसरी इंद्रियां तो क्या, जो इंद्रिय सबसे प्रबल इंद्रिय है जीतना, जिसके लिए गाया हुआ है काम जीते जगत जीत, इंद्रिय जीते जगत जीत, उस इंद्रिय को भी विस्मरण कर दिया। उसकी स्मृति से ही परे हो गया। शिव बाप के रूप में टिक गया तो उस आत्मा के लिंग की पूजा होती है, इसलिए शिव बाप ब्रह्मा द्वारा कहते हैं मैं तो वह करता हूं, मैं कर्मेंद्रियों से कर्म करता हूं या अकरता हूं, मैं तो वह करता हूं। जो करता है सो भरता है, है? अच्छा कर्म करता है, सुखदायी कर्म करता है तो जन्म जन्मांतर सुख पाता है, और दुर्योधन दुशासनों की तरह दुष्ट युद्ध करता है इंद्रियों से, दुष्ट शासन करता है दुशासन, तो जन्म जन्मांतर दुख भोगेगा या सुख भोगेगा? दुख भोगता है। कौरव संप्रदाय है, पांडव संप्रदाय नहीं है, पंडा बाप का बच्चा नहीं है, तो पांडवों में वो अब्बल नंबर पांडव जो माया की युद्ध में सदा इंद्रियों से स्थिर रहता है, क्या अभ्यास करते करते, दुनिया से वैराग्य करते करते क्या स्टेज बन जाती है? है माया के युद्ध में, मायावी कर्मेंद्रियों के युद्ध में क्या करता है? सदा विजयी हो जाता है। हारने का नाम ही नहीं। इसलिए एक ही संपन्न रूप है दुनिया में, देवताओं के बीच में, नर से नारायण, जिसकी कभी भी युद्ध में हार नहीं हुई, शूटिंग पीरियड में हार नहीं हुई। तो 5000 वर्ष के ड्रामा में उसकी हार होगी है। इसलिए भारत का नाम बहुत गाया हुआ है। क्या भारत में जैसे वीर योद्धाएं हुए हैं, ऐसी वीरता का काम करने वाली योद्धाएं दुनिया में कहीं भी नहीं हुए। तो यहाँ बाप कौन सी वीरता सिखाते हैं? है जो माया का युद्ध है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इन पांच विकारों का युद्ध, उनमें भी जो बड़ा प्रबल है कौन? काम इंद्रिय का युद्ध। उस काम इंद्रिय के युद्ध में बाप की याद में रह करके ही विजयी बन सकते हैं। क्या? इसकी याद में रहकर, बाप की याद में ही रहकर के विजयी बन सकते हैं। बाप की याद में या बाबा की याद में? है बाप की याद में। बाप कहेंगे वो तो दुनिया का सबसे बड़ा सन्यासी है। आत्माओं का बाप दुनिया का सबसे बड़ा सन्यासी है या नहीं है? तो पक्का प्रवृत्ति मार्ग वाला वो बेहद का बाप कौन है? है प्रजापिता, मनुष्य सृष्टि का बाप, जो सृष्टि के आदि से लेकर के अंत तक प्रवृत्ति का पक्का है, निवृत्ति में कभी रहता ही नहीं। वो निवृत्ति मार्ग वाले गुरु प्रवृत्ति को छोड़ करके भाग जाते हैं। टायर हैं या विकारों के युद्ध को जीतने वाले हैं? हैं टायर हैं। अर्जुन को भगवान कहते हैं तू कायर मत बन। क्या अर्जुन कहता है? इस विभत्स कार्य में मेरे को क्यों जोड़ते हो? हे भगवान, इस बड़े घृणित कार्य में मेरे को क्यों जोड़ते हो, क्यों लगाते हो? भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं भगवान? कहते हैं मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसे। इस दुनिया में जो भी मनुष्य मात्र है, मैंने जो रास्ता अपनाया है उसी रास्ते का अनुगमन करते हैं। मैं जब इस दुनिया में आता हूँ, शिव ज्योति बिंदु जब इस दुनिया में आता है तो प्रवृत्ति में रहता है या निवृत्ति में रहता है? प्रवृत्ति में रहता है। वो धर्म पिता है तो आज एक के साथ प्रवृत्ति जोड़ते हैं, कल छोड़ देते हैं, दूसरी प्रवृत्ति अपनाते हैं। उनके फॉलोअर्स भी आज एक शादी की डाइवोर्स दिया, कल दूसरी, तीसरी, चौथी, अंग्रेज लोग तो पता नहीं बीसियों शादी करते रहते। तो प्रवृत्ति को निभाने वाले हैं या प्रवृत्ति को तोड़ने वाले हैं? वो सब निवृत्ति मार्ग वाले धर्म पिताएं हैं, उनके फॉलोअर्स भी निवृत्ति मार्ग वाले हैं। एक सुप्रीम सोल बाप ही है जो साकार मनुष्य सृष्टि में आकर साकार मनुष्य के रथ में प्रवेश करके पक्की प्रवृत्ति निभाता है बेहद की। दुनिया वाले तो एक के साथ, दो के साथ, चार के साथ, आठ के साथ, बीस के साथ, सौ के साथ निभाएंगे, निभाते हैं या तोड़ते जाते हैं, हैं? तोड़ते जाते हैं। और मैं, मेरी प्रवृत्ति तो शास्त्रों में गाई हुई है। कितनों के साथ प्रवृत्ति है? 16,000 गुप्त संबंध इंद्रियों का जोड़ने वालों के साथ मेरी प्रवृत्ति है, और कोई को मैं छोड़ता नहीं हूँ। छोड़ता हूँ है? बच्चे खुद ही भाग जाते हैं, मैं तो नहीं किसी को भगाता। वो भगाने वाला है या थमाने वाला है? थमाने वाला है। तो देखो, ऐसा प्रवृत्ति मार्ग का निराकारी सो साकारी बाप, जिसकी यादगार शिवलिंग दुनिया में सार्वभौम है, विदेशों की खुदाइयों में भी मिली है, वो बाप बिचारा 63 जन्मों का बहुत भटका हुआ है। वो बाप बिचारा बोलता है संगम युग में भी बहुत भटका हुआ है। शूटिंग करेगा कि नहीं है? सत्य असत्य का युद्ध, महाभारत युद्ध होता है या नहीं होता है? है? तो बहुत भटका हुआ बेचारा बोलता है, क्या बोलता है? ये बच्चियां जाती हैं सर्विस फील्ड पर, समझाती है, कोई के ओ भी युक्ति से पूरा तीर नहीं लगाती है। कौन सी बच्चियों की तरफ इशारा किया? किस समय की बात है? है 66 की बात। ये बच्चियां कोई को पूरा तीर नहीं लगाती कि ये बाप है। क्या? कौन सा बाप? जो जन्म जन्मांतर है विधर्मियों से, झूठे धर्म वालों से, विदेशियों से टक्कर लेता रहा है। सत्य है, इसलिए सदा टिका हुआ रहा है, युद्ध में स्थिर रहा है या भाग खड़ा हुआ है? सदा स्थिर रहा है, हिस्ट्री देख लो। उसकी पहचान देना, उसको जानना, उसको परखना, उसको समझना, ये तो बिल्कुल सहज है। क्या बोला? उनको समझना बिल्कुल सहज है। उनको क्यों कहा? उसको क्यों नहीं कहा? हाँ, आगे वाला पार्ट तो है दूर का, लेकिन उसको कहना चाहिए, एक को कहना चाहिए। उनको क्यों कहा है? हाँ, क्योंकि उसमें तीन आत्माएं पार्ट बजाती है, तो उनको कहें या उसको कहें? है उनको समझना और समझाना बिल्कुल सहज है। ऊंचे ते ऊंचा भगवान, ये बात मानते हो त्रिमूर्ति में? कौन सी मूर्ति है ऊंचे ते ऊंचा भगवान है? हाँ, त्रिमूर्ति में जो ऊपर शिवलिंग रखा हुआ है वो अव्यक्त मूर्ति जिसका व्याख्यान भगवत गीता में भी दिया हुआ है, वो अव्यक्त मूर्ति भगवान है। क्या अव्यक्त क्यों है? अव्यक्त इसलिए है कि उसमें इंद्रियां दिखाई नहीं देती। किसमें? उस शिवलिंग में इंद्रियां दिखाई नहीं देती। शरीर का बड़ा रूप तो दिखाई देता है लेकिन उसे इंद्रियां है ही नहीं, वो ही भगवान है। अच्छा, वो भगवान सबका ही बाप है। क्या सबका माने कितने का? 500-700 करोड़ का बाप है तो बेहद का बाप है या हद का बाप है? क्राइस्ट को 250-200 करोड़ दुनिया के मनुष्य अपना बाप मानते हैं, तो हद का हुआ या बेहद का हुआ? है वो भी हद का बाप, लेकिन ये जो बाप है जो त्रिमूर्ति में ऊंचे ते ऊंचा भगवंत के रूप में दिखाया गया है, ये सबका बाप है, सभी आत्माओं का बाप है। सभी आत्माओं का बाप ज्योतिबिंदु इसमें है या नहीं
है?
सभी आत्माओं का बाप है कि चलो ब्रह्मा द्वारा वर्षा मिलना चाहिए ना। सभी आत्माएं कहेंगी, क्या कहेंगी? कहाँ चलो है? सभी आत्माओं का बाप जहाँ पार्ट बजाए रहा है जिस तन में मुकर्रर रथ में, वहाँ चलो ब्रह्मा द्वारा वर्षा मिलना चाहिए ना।
अरे
ब्रह्मा दादा लेकर आज तो शरीर छूट गया है, तो कौन से ब्रह्मा की बात है? ब्रह्मा क्या, नामधारी तो बहुत है, जो ब्रह्मा सो विष्णु भी बनते हैं, विष्णु के रूप में सहयोगी बनते हैं, कोई राइटियस कोई लेफ्टिस्ट, सहयोगी भुजाएं तो है ना। तो ब्रह्मा द्वारा वर्षा मिलना चाहिए, वहां चलो। वहां माने कहां चलो? 500-700 करोड़ मनुष्य विदेशों में, विदेशी धर्म खंडों में ज्यादा रहते हैं या भारत में रहते हैं? 500-700 करोड़ मनुष्य है? अरे ढेर के ढेर मनुष्य कहाँ रहते हैं? विदेशों में रहते हैं या भारत में रहते हैं? विदेशों में रहते हैं। तो वो बोले कि चलो ब्रह्मा द्वारा वर्षा मिलना चाहिए ना, बाप का वर्षा मिलना चाहिए, बेहद के बाप का वर्षा। क्या कौन बेहद का बाप है? सिर्फ प्रजापिता बुद्धि में बैठ जाता है। आत्माओं का बाप और मनुष्यों का भी बेहद का बाप, उसके पास चलो, उसका नाम भी ब्रह्मा है, क्योंकि जिस तन में मैं प्रवेश करता हूँ उसका नाम ब्रह्मा देता हूँ। तो पहले पहले किस तन में प्रवेश करता है? परम ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। तो उसके द्वारा वो मीडिया है मुक्ति, जीवन मुक्ति का बेहद का वर्षा मिलना चाहिए। क्या है? मीडिया। कहाँ बैठा हुआ है मीडिया बनकर? है ऊंचे ते ऊंचा भगवान, मनुष्य शक्ति झाड़ में ऊंचाई पर बैठा हुआ है। उसकी तरफ इशारा किया कि चलो ब्रह्मा द्वारा मिलना चाहिए वर्षा, मुक्ति जीवन मुक्ति का। ये बाप का वर्षा है, बेहद का वर्षा। अच्छा, पहले भी था ना, ये बेहद का वर्षा देने वाला बाप पूर्व कल्प में भी था या नहीं था? भारत को वर्षा मिला हुआ था ना पूर्व कल्प में कि नहीं मिला था? मिला था। आज 5000 वर्ष हुआ, वो बेहद का मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा इस ब्रह्मा द्वारा मिला हुआ था। ये परम ब्रह्म रूपी ब्रह्मा मीडिया है। किस बात का? मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा दिलाने के लिए इसे मीडिया से होकर के ही गुजरना पड़ेगा। क्या सारी दुनिया की आत्माएं महामृत्यु के समय किसको याद करेंगी? निराकार ज्योति बिंदु को याद करेंगी या साकार को याद करेंगी? निराकार ज्योति बिंदु को याद करना सहज है या साकार को याद करना सहज है? साकार को याद करना सहज। पूर्व जन्मों की आदत पड़ी हुई है। क्या है? साकार संबंधों को याद करते हैं। तो वो याद उसकी हर मनुष्य मात्र में महामृत्यु के समय समाई हुई होगी। वो याद ही मनुष्य आत्माओं को बाप की तरफ आकर्षित करेगी। इसलिए वो आकर्षण करने वाला मीडिया कृष्ण भगवान के नाम से गाया हुआ है, परंतु व्याख्याकारों ने अर्थ गलत कर दिया। क्या करते हैं? गलत अर्थ कर दिया है। आकर्षण करने वाले का नाम क्या दिया? कृष्ण, और उसको द्वापर के अंत में ठोक दिया है। कहां की बात, जो सारी दुनिया की मनुष्य आत्माओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। अभी 84 जन्म आकर पूरा हुआ है। ये चक्कर देखो, और फिर बाबा फिर ब्रह्मा द्वारा हमको ये वर्षा देते हैं। देखो, हम ब्रह्मा कुमार कुमारी है ना, क्या करते हैं? हैं? बाप से बेहद का वर्षा लेते हैं, पढ़ाई पढ़ते हैं, मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ते हैं, हैं? राजयोग सीखने की पढ़ाई पढ़ते हैं। ऐसा तो कभी नहीं होता कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई, डॉक्टर की पढ़ाई यहाँ पढ़े और हमको कहा जाए अगले जन्म में इंजीनियर डॉक्टर बन जाना। तो कोई पढ़ाई पढ़ेगा है? और भगवान के लिए क्या समझते हैं कि भगवान आकर गीता ज्ञान देता है वो ज्ञान गीता का हम जन्म जन्मांतर सुनते और पढ़ते हैं और कोई 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 न कोई जन्म में भविष्य में हमारी मुक्ति हो जाएगी, ऐसा नहीं है क्या? ये तो अंधश्रद्धा है, भगवान अंधश्रद्धा नहीं सिखाते क्या? श्रद्धा विश्वास तो अच्छी चीज है, लेकिन अंधी श्रद्धा अंधा विश्वास ये नहीं सिखाते। हमको राजयोग सीखना है, राजयोग सीख करके हम यही राजा बनेंगे। क्या कहा? यही इस दुनिया की मनुष्य आत्माओं के ऊपर, सब धर्म की आत्माओं के ऊपर कंट्रोलर बनेंगे। सारी दुनिया हमारे कंट्रोल में प्रैक्टिकल में चलती हुई दिखाई देगी। कहाँ है? यहाँ संगम युग में हम विश्व के बादशाह बनेंगे। विश्व के बादशाह बनेंगे तो विश्व धर्मों की जो और आत्माएं हैं वो हमारे कंट्रोल में आएंगी या नहीं आएंगी? आएंगी। तो आओ आकर के राजयोग के द्वारा ये राजाई का ऊंचे से ऊंचा विश्व की बादशाही का वर्षा ले लो। ये राजाई का वर्षा कोई भी धर्म पिताओं ने नहीं सिखाया, कोई मनुष्य मात्र ने नहीं सिखाया। राजाई करना, राजाई की पढ़ाई किसी ने नहीं पढ़ाई सिवाय एक परम पिता परमात्मा के। कोई भी मनुष्य मात्र इंद्रिय जीते जगत जीत की पढ़ाई नहीं पढ़ा सकता। बस तुम बच्चे जैसे कि ये झटपट हरेक के ऊपर जादू कर देते हो, क्या दुनिया की हर आत्मा यही रास्ता पकड़ेगी? और टाइम नहीं लगेगा, ये राजयोग सीखने में सिखाने में झटपट ये काम होगा। ऐसा जादू अभी तुम करते नहीं हो क्या? ऐसा जादू नहीं करते हो तो फिर बाबा क्या करेंगे? क्या विचार? अभी यहां से बाहर निकलते हो तो कहां जाते हो? है अभी बैठो 7 रोज क्या? अभी जो सीखना है, जो बाप प्रैक्टिकल में शरीर की इंद्रियों के साथ संबंध जुड़वा करके राजयोग सिखा रहे हैं वो राजयोग की पढ़ाई 7 दिन बैठ करके फिर सीखो। क्या कहा? एक अव्यक्त वाणी में कुमारियों की समर्पण समारोह की भट्टी हो रही थी, उसमें अव्यक्त बाप दादा ने बोला ऐसे नहीं समझना, ये पहला समर्पण समारोह और आखिरी समर्पण समारोह है, अभी दोबारा भी समर्पण समारोह होगा। क्या तो समर्पण होने से पहले भट्टी भी कराई जाती है या नहीं? है और अभी जिन्होंने भट्टी कर ली छोटी सी छोटी राजधानी स्थापन होगी 40 वर्ष पूरे होंगे तो उस राजधानी में ऐड होने वाले ब्राह्मण सो देवताओं को दोबारा भट्टी करनी पड़े या नहीं करनी पड़े है करनी पड़ेगी। उस भट्टी में पक्का पक्का बुद्धि में बैठेगा जो इन आंखों से देखेगा इसको बाप को जो इन कानों से दो शब्द भी सुनेंगे बाप के द्वारा बोले हुए दो शब्द उनकी बुद्धि में पक्का बैठ जावेगा दिलो दिमाग में बैठ जावेगा कि मेरा बाप मेरे को एवरलास्टिंग मिल गया। ऐसा बाप का बच्चा बनकर जन्म लेंगे ऐसा बच्चा जिसकी भविष्य में 2500 वर्ष तक कभी मृत्यु होगी ही नहीं। स्वेच्छा से शरीर रूपी कपड़ा उतारेंगे और स्वेच्छा से शरीर रूपी कपड़ा धारण करेंगे उसको मृत्यु कहेंगे नहीं कहेंगे। तो अभी बैठो 7 रोज पक्का हो जाओ जब पक्के ब्राह्मण हो जाएंगे तब पक्के देवता बनेंगे नहीं तो फिर भूल जाएंगे। क्या क्या कहा कहते हैं ब्रह्मा ने सृष्टि रची एक बार रची पसंद नहीं आई बिगाड़ दी। संक्षिप्त 37 में रची पसंद नहीं आई तो फिर सन 47 में ब्राह्मणों की नई सृष्टि रची या नहीं रची है रची ना। फिर 76 के लिए घोषणा कर दी पुरानी दुनिया का विनाश नई दुनिया की स्थापना। तो ब्राह्मणों की पुरानी दुनिया का विनाश सन 76 से विघटन होने लगा एडवांस पार्टी के ज्ञान के द्वारा और नया संगठन ब्राह्मणों का शुरू हो गया। अभी क्या बोला है अभी फिर बोला तुम बच्चों को तमोप्रधान से सतोप्रधान बनने में सतोप्रधान दुनिया में सतोप्रधान राजधानी में जाने में कम 40 वर्ष लगते हैं। तो कब पूरे होते 17-18 उसका नाम ही है 17 कौन रहेगा जो सच्चा होगा वो ही रहेगा जिस सच्चे ने जन्म जन्मांतर इस झूठी दुनिया वालों से टक्कर ली है और संगम युग में भी टक्कर ली या नहीं ली होगी जरूर ली होगी तभी तो सत्यनारायण की कथा गाई हुई है घर घर में गाई जाती है या कोई एक घर में गाई जाती है। तो देखो 7 रोज पक्का करो नहीं करेंगे तो फिर भूल जाएंगे। क्या ये 40 वर्ष के बाद जो नई राजधानी स्थापन होगी उसमें पक्की भट्टी नहीं की फाउंडेशन पक्का नहीं डाला तो क्या होगा है फिर बिल्डिंग गिर जाएगी। 84 जन्मों की शूटिंग करने वाली जो बिल्डिंग तैयार होती है, फाउंडेशन पड़ता है भट्टी में, वो फिर कैंसिल हो जाएगी। मना, तीन बार ब्रह्मा ने सृष्टि रची और तीनों बार बिगाड़ दी। सत्रह अठारह में आठ की छोटी राजधानी तैयार होती है और वो बढ़ते 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 108 राजाओं की माला की राजधानी संगठन तैयार हो जाता है। तो पूरी राजधानी कब स्थापन होगी? 2028 में। चौथी बार बिगाड़ी नहीं जाएगी। क्या पुरानी दुनिया के बीच नई दुनिया की पक्की पक्की राजधानी 2500 वर्ष के लिए स्थापन हो जाएगी? कोई भी विधर्मी, कोई भी विदेशी, कोई भी विदेशी धर्म सत्ता, कोई भी विदेशों की पावरफुल से पावरफुल राजधानी, महाशक्ति क्यों न हो, अमेरिका महाशक्ति कही जाती है ना, वो भी जीत नहीं सकेगी। ऐसा संगठन पावरफुल बन जाएगा। तुम ब्राह्मणों का संगठन रूपी किला ऐसा पावरफुल बन जाएगा जिसमें कोई भी भिखारी पांव रख ही नहीं सकेगा। ओम शांति।